हुए प्यारे भाई और बहनों, हम तो पहुंच गए हैं क्लास नंबर 13, हमारी आत्मा की पढ़ाई का भाग दो। मनुष्य की आत्मा की पढ़ाई का भाग दो, क्लास नंबर 13, जो हम देखेंगे कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस, बाइबल की कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस कहने का मतलब कि अभी तक तो हमने समझ लिया कि मरने के बाद कोई जीवन नहीं है, एक जीवित आत्मा जब मर जाती है शरीर मिट्टी में, और सांस जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के पास वापस, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई वापस नहीं आ सकता। कल हमने देख लिया वो अपने घर को नहीं पहचानेगा, उसकी याददाश्त जाती रही, उसका ना प्रेम ना कोई, उसका वैर ना कोई, उसकी ईर्ष्या कुछ भी नहीं। लेकिन बाइबल में ही कुछ ऐसे वाक्य हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि ये कैसे, जैसे हम कल देख रहे थे एक सॉल और सैमुअल का केस, तो उसको पूरे को हम पढ़ेंगे। इसको इसीलिए इसका नाम चैप्टर का रखा हमने बिब्लिकल कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब एक तरफ तो बाइबल ऐसा बोल रही है लेकिन ये मरने के बाद तो जीवन की कुछ उदाहरणें बाइबल ही दे रही है, तो ये क्या है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। पहला सैमुअल 28 का 7 से लेके 19 तक, एक सैमुअल 28 का 7 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे वो पूरा वाक्य। सात से उन्नीस, सात से लेके, सात से लेके 19 तक, नहीं, 28 का 7 से लेके 19 तक।
पहला 28 का है ना?
हाँ जी, पहला सैमुअल 28वां चैप्टर, उसका 7वें वचन से लेके 19वें वचन तक। हाँ जी पढ़िए।
तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी धूप सिद्धि करने वाली को ढूंढ कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एंडोर में एक धूप सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर जो मनुष्य संग लेकर रात रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपनी सिद्धि धूप से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसने और धूप सिद्धि करने वालों का देश देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला।
जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊँचे स्वर से चिल्लाई और साऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो साऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, मुझे क्या देख पड़ता है। स्त्री ने साऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है। उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बग्गा उड़े हुए चढ़ा आता है। तब साऊल ने निश्चय जानकर कि वह समुएल है, पौंदे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। समुएल ने साऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया। साऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। समूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है। यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमोलकियों को और उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे ऐसा बर्ताव किया, फिर यहोवा तुझे तुझ समेत इसराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत मेरे साथ होगा और इसराइली सेना को भी यहोवा फिलिस्तीनियों के हाथ में कर देगा। तब साऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और समूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इससे उसमें बल चुप भी न रहा। तब वह स्त्री साऊल के पास गई।
बस बस 19 तक हो गया ना।
हाँ,
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इसराइल का राजा साऊल एक औरत को ढूंढता है जो भूतों को बुलाती है और चाहता है कि वो औरत उसके लिए मरे हुए शमूएल को बुलाए। ठीक है, तो इसके लिए सॉल क्या करता है, अपना भेष बदलता है, है ना। सबसे पहली बात उसने क्या देख रहे हैं, भेष बदला। भेष क्यों बदला, क्योंकि राजा सॉल की जो पर्सनैलिटी थी, जो उसका शरीर था, वो पूरे इसराइल में माना हुआ था, जैसे पूरे जलंधर खड़ा हो एक जगह पे और उसमें दिलीप सिंह खड़ा हो तो साफ दिखेगा ना। चाहे अभी वो कोई भी रूप बदल ले, हम उसे पहचान लेंगे, चाहे वो पैंट शर्ट पहन ले या पुलिस की वो पहन ले, रहेगा तो दिलीप सिंह ही ना। तो ये बात पढ़ लो, पहला शमूएल 10:23।
तब वे दौड़ कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सर तक सब लोगों से लंबा था।
मतलब अलग ही दिखता था खड़ा हुआ कि ये सॉल है। अभी सॉल ने भेद बदला और औरत के पास गया, तो औरत को पहले ही पता चल गया था ये कौन है। चाहे भेद बदल लो, इसराइल का राजा था ये, ठीक है, ये इसराइल का राजा था और वो पहचान की थी ये सऊल है। तो सबसे पहली बात पता क्या बोलती है, तुम्हें नहीं पता राजा का क्या हुक्म है, जो ऐसा काम करेगा वो मार दिया जाएगा। 9वें वचन में पढ़ लो।
9वें में,
हाँ 9, 28 का 9।
किसी ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है कि उसके ऊंचों और भूख सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है।
तो देखो वो बोलती है, तुम्हें पता है ये शाऊल की आज्ञा है राज्य में कि ऐसा कोई काम करेगा तो वो नाश कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया था शाऊल ने, व्यवस्था सार 18:10-12 तक। व्यवस्था सार 18:10-12 तक। जी,
तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में भून करके चढ़ाने वाला या वादी कहलाने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या सोना या तांत्रिक या बाजीगर या ऊंधों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं ये सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं।
देखो,
और
ये सब जो तांत्रिकपन ये वो सब ये करना नहीं है, ये किसी कंस के पास जाना नहीं है, मुहूर्त शुभ है अशुभ है ये सब विश्वास करने वालों से परमेश्वर तो नफरत करता है। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है, एक कानून दिया परमेश्वर ने अपने लोगों को कि ये सब नहीं करना है। इसीलिए जब सॉल जब राजा बना तो उसने बोला परमेश्वर का नियम ये है, परमेश्वर का कानून ये है और मेरे राज्य में अगर ऐसा करने वाला कोई पाया गया तो वो मारा जाएगा। तो इसलिए जो कोई उसके राज्य में ये करता था उनको वो मार देता था। तो ये औरत उसको बोलती है, तुम्हें पता है सॉल ने ऐसा किया है, सॉल ने तो उनको मार दिया जो ऐसा काम करते हैं। तो अभी सॉल में ऐसा बदलाव क्या आया कि खुद ही वो अपने राज्य में कानून लेके आया कि ऐसा कोई करने वाला नहीं है, अभी खुद ही वो कानून को तोड़ने जा रहा है। क्या हुआ सॉल के साथ ऐसा, क्या बदलाव आ गया उसमें ऐसा जिसकी वजह से वो अपने ही बनाए हुए कानून को क्या करने जा रहा था, तोड़ रहा था। ये पढ़ लो बात, पहला शमूएल 16:14, एक शमूएल 16:14। हाँ जी,
यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया।
परमेश्वर का आत्मा सॉल को छोड़ दिया और कौन सा आत्मा आ गया, अभी आगे पढ़ लो।
और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा।
दुष्ट आत्मा भी उसमें आ गया। परमेश्वर का आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ कौन रहेगी,
दुष्ट आत्मा।
इसलिए सब जगह क्या है, बोलते ना इसमें दुष्ट आत्माएं निकालनी है, अरे इन सब में दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि इनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। सब दुष्ट आत्मा से क्या हुए, जकड़े हुए हैं। किस किस की निकालोगे,
इसलिए परेशानियां।
ठीक है, तो जब परमेश्वर की किसी आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ देता है। ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने आज्ञा दी सॉल को कि अमेलेकाइट्स वालों को सबको मार देना, उनकी कोई भी वस्तु नहीं छोड़ना, लेकिन इसने पता क्या किया, इसने रख लिया। पहला शमूएल 15:10 से लेके 11 तक पढ़ लो।
तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं सॉल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा।
तो परमेश्वर ने बोला था अमलेकाइट्स को मार दो, बचना नहीं है कुछ भी, लेकिन इसने क्या किया, उसका अच्छा अच्छा जो धन था ना, जानवर ये वो सब रख लिए। तो परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया,
उल्लंघन किया।
तो परमेश्वर ने फिर क्या बोला, अब ये मेरे यार पीछे नहीं चलता। शमूएल ने भी सॉल से बात करनी छोड़ दी। 35 में पढ़ लो ये बात,
इसी के 35 में।
हाँ जी, 15:35।
और शमूएल ने अपने जीवन भर सॉल से फिर भेंट ना की, क्योंकि शमूएल सॉल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा सॉल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था।
तो शमूएल ने सॉल से बात करनी छोड़ दी, जिंदगी भर मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसी तरीके से इसमें एक और बात है, जब हम परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उसी वक्त हमें क्या करता है, छोड़ देता है, और फिर दुष्ट आत्मा हमें घुस जाती है, फिर हम इधर उधर सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये था कारण उसके बदलाव में, खुद ही कानून बनाया, अभी खुद ही कानून तोड़ने जा रहा था। ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से जो कानून मिला था उसको तोड़ने जा रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा होता है वो पता क्या होता है, वो पढ़ लो दूसरा तिमोथियस एक का सात। हाँ जी,
क्योंकि परमेश्वर हमें
भय
की नहीं,
डर वाली आत्मा नहीं है परमेश्वर की आत्मा, हाँ,
पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
सामर्थ, प्रेम और संयम, लेकिन इंग्लिश में है साउंड माइंड, यानी समझदारी वाला मन। साउंड मन यानी समझदारी की आत्मा। ठीक है, तो परमेश्वर की आत्मा होती है सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा और समझदारी की आत्मा। ठीक है, तो ये समझदारी क्या हुई, सॉल से दूर हो गई, और सॉल को किसने जकड़ लिया, अभी दुष्ट आत्मा ने, वो भी परमेश्वर ने ही अनुमति दी, क्योंकि ये किससे आ रही है, परमेश्वर की ओर से, और वो आप हम समझते हैं वो कौन है। ठीक है। तो ऐसे औरत ने पहला क्वेश्चन उसके सामने ये रखा, तुम नहीं जानते ऐसा सॉल ने किया हुआ है। तो आगे सॉल क्या उत्तर देता है, ये चलते वापस हम 28 में, पहला सैमुएल 28 का 10 और 11। सॉल कसम खाता है, मैं कसम खाता हूं, यहां पे भी कंफर्म कर रहा है कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम करो, तुम्हें कोई नहीं पकड़ने वाला।
लेकिन वो तो पहचान गई थी,
पहले ही पहचान गई थी, लेकिन अभी तो नाटक कर रही थी ना।
28
जी,
शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा,
देखो अभी परमेश्वर की शपथ खाकर बोल रहा है। हाँ, क्या बोलता है?
यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा।
तो ऐसे अथॉरिटी, ऐसे अधिकार से कौन बोल सकता है? आपको अगर मैं ऐसा आके बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगी ये कौन है। बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर अभी औरत को तसल्ली मिल गई, अब मैं फ्री हूँ। फिर आगे बोलते देख लो क्या बोलती है।
तब इस बात के कारण दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किस बात?
अच्छा, अब बता मैं किसको बुलाऊं?
बुलाऊं।
तो वो बोलता है मेरे लिए मरे हुए सैमुएल को बुलाओ। ठीक है, तो राजा बोलता है कसम खा के तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है, और सैमुएल को बुला। अभी 12वां वचन देखो क्या हो रहा है।
जब स्त्री ने सैमुएल को देखा तब उसे सबसे चिल्लाई और साउल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया, तू तो साउल है।
ये पखंडियों वाला रूप देख लो। उसने किसको देखा? सैमुएल को। सैमुएल को देखते ही बोली सबसे पहले, अरे हे राजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तू ही तो सॉल है। सॉल, वाह यार, इसमें तो कुछ कोई बात है, ये तो पक्की बात है, ये तो कर्मी बाबा जी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ऊंची आवाज से चिल्लाई और पहचान बता देती है राजा सॉल को कि हाँ तू राजा सॉल है। ये कैसे हुआ? उत्तर बड़ा साफ है। सैमुएल की आत्मा ने आके राजा को ये बोला होगा, अरे राजा सॉल, शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, ऐसा बोला होगा, ऐसा ही बोला होगा। हाँ सॉल, रिकॉर्डेड तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला, हाँ भाई सॉल, शालोम, शालोम था ना उनका तरीका एक दूसरे से बातचीत करने का। तो आगे 13 और 14 पढ़ लो।
राजा ने उससे कहा, मत डर, मुझे क्या देख पड़ता है। इसने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बग्गा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब साउल ने निश्चय जानकर कि वह सैमुएल है, पौधे भूमि पर गिर के दंडवत किया।
इस वचन को ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो राजा सॉल को सैमुएल नहीं दिख रहा है। दिख रहा है उसको? क्या बोलता है, तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? वो बोलती है, एक बूढ़ा सा देवता निकल रहा है, एक बूढ़ा सा देवता। फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो।
राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या दिख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।
अब ये देखो, अगर कोई आत्मा नाम की चीज है तो वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी?
धरती पर आएगी या धरती से जाएगी?
नहीं, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर आएगी?
ऊपर से आएगी या नीचे?
अगर ये लोग जैसा बोलते हैं तो ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? धरती में से, धरती भी लिखा है, सही बात ना? बोलते धरती में से एक आत्मा निकल रही है, तो वो पूछता दिखने में कैसी है। फिर पढ़ लो आगे, पढ़ो।
राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या दिख पड़ता है? स्त्री ने साउल से कहा,
बताओ,
मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।
तो ये तो मत डर,
देवता के रूप को हम आत्मा बोलेंगे?
बताता हूँ। वो बोलती मत डर, राजा बोलता है, वो कैसा दिखता है, ये है यहाँ पे, व्हाट फॉर्म इज ही ऑफ, वो कैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है?
उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा,
हाँ ये ठीक है, रूप है। दिखने में कैसा है, क्या है, तो वो क्या बोलती है, एक बूढ़ा इंसान, एन ओल्ड मैन का मतलब देवता नहीं है, देवता गलत है, क्या है सिस्टर हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ लो, हाँ 14 ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी देवता नहीं, क्या बोला, बूढ़ा आदमी तो निकल रहा है, अच्छा बूढ़ा आदमी तो क्या है, निकल रहा है, और उसमें क्या उड़ा हुआ है, चद्दर, क्या उड़ा हुआ है, चद्दर ही लिखा है हिंदी में, चद्दर, चद्दर उड़ी हुई है, और फिर सॉल ने समझा यही सैमुअल है, आगे पढ़ लो,
एक बूढ़ा बग्गा उड़े हुए चढ़ाता है, तब सॉल ने निश्चय जानकर कि वह सैमुअल है, उन्होंने भूमि पर गिर के दंडवत किया,
सॉल ने समझा ये सैमुअल ही होगा, ये चद्दर ओढ़ने वाला, आपको पता है नबी लोग जो भविष्यवक्ता थे उनका रूप कैसा होता था, दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूसा ये सब सब ऐसे थे, दाढ़ी बड़ी बड़ी, और इनका खास चिन्ह होता था चद्दर, क्योंकि अगर आपको पता हो इसने एलिया ने क्या किया था, चद्दर ली और पानी पे मारी, ठीक है, तो ये चद्दर जो चिन्ह होता था ये होता था भविष्यवक्ता का, ठीक है, तो सैमुअल कौन था, भविष्य वक्ता, और सारा इजराइल जानता था सैमुअल को कैसे चलता है, कैसा उसका रंग रूप है,
उसी ने मस्तक किया था ना,
हाँ, औरत भी जानती थी और ये भी जानता था, ठीक है, खास करके जो चद्दर जो चिन्ह होता था ये तो भविष्य वक्ताओं का होता था, ये पढ़ लो दूसरा राजा 2:13
आज भी है ना, वो बहुत से लोग 2:13 है ना नकल करते हैं, बहुत से पादरी लोग बड़े लूज लूज पहनते हैं, वो इतनी पहनते हैं, फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी,
देखो,
और वह लौट गया और यर्दन के तट पर खड़ा हुआ,
ये भविष्यवक्ता के पास होती थी चद्दर, ठीक है, चलो चद्दर उसने मान लिया कि ये सैमुअल है, फिर उसके बाद क्या होता है, 15वां वचन,
सैमुअल ने साउल से पूछा,
सैमुअल ने साउल से पूछा,
तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है,
क्यों परेशान कर रहा है मुझे,
साउल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया,
सब कुछ साउल बक रहा है, सैमुअल कुछ नहीं बक रहा है, मुझे मैं तो बहुत मुश्किल में हूँ, फिलिस्तीनी मेरे साथ लड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, उत्तर भी नहीं दे रहा है, भविष्यवक्ता के जरिए से, सपनों के जरिए से, कुछ भी नहीं, सब खुद ही बोल रहा है, ये देख लो पढ़ लो,
और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है ना सपनों के,
हाँ।
इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं,
तो ऐसा औरत के जरिए से, जैसे हमने देखा है दुष्ट आत्मा बोलती है ना कई बार, मैं मुझे जो परेशान किया है, तो सॉल मुझे तो ये सब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं इस तजुर्बों से गुजर रहा हूँ, तो फिर ये जो सैमुअल है एक भविष्यवाणी करता है, ये पढ़ लो 18:19 में, हाँ हाँ इसी का आगे,
तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमोलकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे ऐसा बर्ताव किया, फिर यहोवा तुझ समेत इजरायलियों को परिस्थितियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इजरायली सेना
तो सैमुअल एक भविष्यवाणी करता है, आया हुआ सैमुअल, मरा हुआ सैमुअल भूत बन के जब आया उसने एक भविष्यवाणी की, तेरा कल तू और तेरे पुत्र मेरे साथ क्या होंगे, मौत की स्थिति में होंगे, कब्र में होंगे, है ना। तो ये शमूएल की आत्मा ने राजा सॉल की विनती सुन के एक भविष्यवाणी की। क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? अगर ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी है तो ये पूरी होगी,
पूरी होगी
100%, 90 या 99% होगी।
परमेश्वर की ओर से है,
हाँ परमेश्वर की ओर से है, 100% होगी। लेकिन अगर परमेश्वर की मतलब अगर 90 या 99% होती है तो ये क्या परमेश्वर की ओर से है?
नहीं।
चलो देखते हैं। तो ये सब हुआ जैसे शमूएल ने बोला ऐसा हुआ। पहला शमूएल 31 का 1 से लेकर 3 तक।
अगर तेरे 5 पर वो दाऊद ने पूछा ना कि अगर 5 लोग भी धर्मी होंगे तो ये बात यहाँ पर भी लागू हो रही है ना 98
वर्ष। पढ़िए पढ़िए
पहला
शमूएल 31 का 1 से लेकर 3 तक।
फिलिस्ती तो इसराइलियों से लड़े और इसराइली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फिलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातन अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया।
देखो तो थोड़ी देर के बाद लड़ाई हुई, शाऊल हार गया, उसके और उसके पुत्र तो मारे गए। लगता है भविष्यवाणी पूरी हुई, लगता है। लेकिन क्या हुई सच में? दूसरा शमूएल में अभी चलेंगे, दूसरा शमूएल 2 का 8 से लेकर 10 तक। जी
परंतु नेर का पुत्र अब्नेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था उसने शाऊल के पुत्र
इश्बोशेत
को संग ले पास जाकर महनेम में पहुंचाया और उसे गिलाद असूरियों के देश इज़राइल इफ्रेम बेनेमीन वरना समस्त इजरायली प्रदेश पर राजा नियुक्त किया।
तो देखो एक पुत्र बच गया। तो यहाँ पे भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई।
योनाथन
इश्वी मलकिशुआ, ये तो इश्वी तो उसकी बेटी थी। योनाथन अभिनदव और मलकिशुआ ये मारे गए,
ठीक है।
इश्बोशेत बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भविष्यवाणी जो शमूएल ने की थी ये 90% पूरी हुई, 100% नहीं। तो परमेश्वर का पवित्र भविष्यवक्ता शमूएल बहुत खास भविष्यवक्ता था। बहुत आशीष थी परमेश्वर की उस पर, ठीक है। उसी ने ही सॉल को अभिषेक किया, उसी ने ही दाऊद को अभिषेक भी किया। अभी ये तो वो नहीं हो सकता। अभी ये शमूएल कौन था? ये और कोई नहीं बल्कि शैतान था। ये जो आया, ये जो बातचीत की उस औरत के जरिए से, ये शैतान था जो झूठ का पिता है। हाँ झूठ का पिता है शैतान। तो अच्छे भले से जानता है परमेश्वर का कैरेक्टर कि जिसके विरुद्ध परमेश्वर हो गया उसको कौन बचा सकता है? अभी कोई नहीं बचा सकता। सॉल बोलता है अरे मुझे तो छोड़ दिया परमेश्वर ने, ना नबियों के जरिए से ना किसी के भी जरिए से कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो उसने समझ लिया इसका आने वाला कल क्या है, ये तो अविनाश किया जाएगा, इसके बाद एक और राजा परमेश्वर नियुक्त करेगा। तो इसलिए वो भविष्यवाणी करता है तू और तेरे पुत्र भी मारे जाएंगे ये लड़ाई में, अभी ये होने वाली है। तो ये वही एक तरीका, जैसे आप किसी पंडित के पास जाते हो, पंडित को आप अपनी सारी स्टोरी बता देते हो जाके, हिस्ट्री बता देते हो, फिर तुक्का लगता है
थोड़ा वो तो
तुक्का लगा और शैतान चलाता है। शैतान का तुक्का लग भी जाता है 90% तक लग जाता है। ये देख लो लग गया 90% तक सही हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता। तो ये जो शमूएल था जो आया वो शमूएल नहीं था जो मरा हुआ, क्योंकि जो मर जाते हैं वो वापस नहीं आते। ये शैतान था झूठ का पिता, यही वो आज करता है, नाम इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे आप जानते जाते हो पास्टर जी इसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा है। वो पूछते इसने किसी के घर खाया वाया? हाँ वो मरा था, बस उसी जो मरा था ना उसका नाम, वहाँ तुमने मेरे साथ ये किया था ना, मैं वो करने आया हूँ, ये सब कहानियाँ। फिर
तो लेकिन कभी कभी तो सही बात है, तो ये भूती भी नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, फिर भी ऐसा होता है
क्या?
कई पादरी लोग जाते हैं ऐसा, वो पूछते भी नहीं है। जैसे मैं आपको अभी आज प्रैक्टिकली वो मैंने कुछ सुन के रखे हैं, बैठ में नहीं बताऊंगा, जो उनको कुछ भी पता नहीं होता, वो ऐसे प्रेयर करते हैं।
तो फिर क्या, शैतान गुमराह करता है ना, शैतान का काम ही गुमराह करना है। शैतान का काम ही क्या है, गुमराह करना।
क्योंकि मान लो जब हम, मान लो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आपने तो आइडिया लगा लिया, थोड़ा वो तो तीर में तुक्का मार ही सकते हैं तो सामने वाले।
अच्छा नहीं, आप बोल रहे हो कि वो केसेस जिसमें मैंने कुछ नहीं भी बताया, तो शैतान को आपके बारे में थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है,
पता होता तभी तो वो हमारे जीवन में आता
है,
वो हमसे बहुत
ठीक है।
तो इस तरीके से ये कुछ तुक्का, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ आपको देख के, ये सब तो शैतान इस्तेमाल करके धोखे में रखता है। तो कोई वापस नहीं आ सकता, ये कौन है, शैतान, ये जो सारी गेम खेल रहा है और दुनिया तो धोखे में रखा हुआ है। दुनिया भी मान जाती है हाँ वही है, उसकी आत्मा भटक रही है, ये हो रहा है, वो रहा है, हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वचन बोल रहा है जब मर जाता है ना, वो वापस नहीं आता है, कभी आ ही नहीं सकता है। ये सैमुअल नहीं था, मेरी बात सुनो आप, सैमुअल जीवित जीते वक्त जीवन भर उसने उससे बात नहीं की, बाद में अभी मरने के बाद क्या पड़ी है उसको। और सैमुअल ऐसा क्यों करेगा, उसको पता है जब परमेश्वर इसके खिलाफ है, मरते वक्त उसको पता है परमेश्वर ने इसको छोड़ दिया, अभी परमेश्वर इस पे दया करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि सैमुअल के जीते वक्त ही नया राजा नियुक्त हो गया था, कौन, दाऊद। दाऊद को सैमुअल ही अभिषेक करके गया था ना,
लेकिन मैं वादा भी किया था मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वफादारी दिखाई थी ना, बोला था मेरे नुकसान नहीं।
हाँ तो मतलब कहने का मतलब है अगला राजा नियुक्त हो चुका है, अभी इसका एंड तो तय है, ठीक है। तो वो वापस नहीं आ सकता था, और सैमुअल अच्छे जीवन भर अपने परमेश्वर के वफादार रहा है, वो परमेश्वर के विरोध में थोड़ी कुछ वो करेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सैमुअल आता है, भविष्यवाणी भी करता है, भविष्यवाणी भी करता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है।
यस,
शैतान बात कर रहा था, शैतान आज भी करता है, और जिन जिनको जकड़ रखा है उनके जरिए से बात करता है,
कुछ भी बन के आ सकता है,
कुछ भी बात करता है, किसी का भी नाम ले लेगा। हमें विश्वास नहीं करना है, ये हो नहीं सकता, जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये एक वाक्य, ठीक है। अभी एक और वाक्य पढ़ेंगे, वो दूसरा वाक्य क्या था, जो मूला और मूसा और एलिया से बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो पढ़ लो वाक्य, दूसरा वाक्य मत्ती 17 का 1 से लेके 3 तक। एक से लेके तीन तक।
6 दिन के बाद यीशु ने पात्रस और याकूब और उसके भाई योन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए।
तो ये एक वाक्य जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूप बदला और रूप बदलते ही प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से बात की। अब ये कैसे हुआ, इनकी आत्माओं का क्या हुआ, जो मरा हुआ मूसा और एलिया जो है वो तो प्रकट हो गए और प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करनी शुरू कर दिए, है ना। ये फिर से कंफ्यूजन वाली बात, से डाउट में डाल दिया। हाँ तो अभी यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम ये देखेंगे कि योहन्ना, पत्रस और याकूब को कैसे पता चला के ये मूसा है और ये एलिया। उन वक्त उन दिनों में फोटोग्राफी कैमरा तो होता नहीं था, होता था
नहीं, वो तो सब कुछ नहीं था।
तो
वो लोग जो लोग परमेश्वर का पवित्रता से जीते थे, जैसे आप आज हम देखते हैं, आज जो शैतान का पूरा रहा है, शैतान तो हर चीज कर देता है ना, तो ऐसे वो लोग भी तो परमेश्वर के साथ रहते थे, इतना तो उनको ज्ञान था ही
नहीं, तो मरा हुआ मूसा वापस कैसे आ सकता है?
वो तो नहीं आ सकता, वो नहीं बोल रहा। मैं एक पहचान वाली बात बता रहा हूँ कि ये मूसा ये एलिया कामों के द्वारा वो इतने फेमस तो हो ही चुके थे।
नहीं हो चुके थे, लेकिन देखिए बात करनी अलग बात है, लेकिन पहचान कैसे लूं कि मैं मुझे कैसे पता चलेगा आप जेपी आप हजारों लोगों में खड़े हो, मैंने आपको नहीं देखा है, ठीक है? तो अभी तक पवित्र आत्मा भी नहीं मिला था, पेंटिक्रूस वाले दिन मिला पवित्र आत्मा, तो इनको कैसे पता चल गया ये मूसा है या एलिया? हाँ, याकूब और इनको, क्योंकि कैसे प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था, क्या मूसा एलिया, तो उनको पता चल गया कि ये मूसा और एलिया से बातचीत हो रही है, कुछ तो बातचीत हो रही है, तो बातचीत के जरिए उनको पता चला कि ये तो कौन है मूसा और एलिया, ठीक है? अभी प्रश्न हमारा वहीं का वहीं खड़ा है कि इनकी आत्माएं कैसे वापस आ गई, अगर ये मरे की वापस नहीं आ सकती।
एक और मेरे दिमाग में, जब परमेश्वर बात करता था वो तो एकांत में बात करता था, किसी से नहीं करता था।
नहीं, लेकिन ये तो हम इन्होंने देखा ना, ये तो देखा है, तीन चेले थे ना साथ में, फिर से पढ़ लो ये वचन, ध्यान से पढ़ो।
छह दिन के बाद यीशु ने पतरस याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। ठीक है
तो ये क्या है, ये है एक क्या बोलते हैं, बड़ा हमें कंफ्यूजन में डालने वाली बात कि मूसा और एलिया कैसे वापस आ गए, है ना? तो इस प्रश्न को उत्तर के जानने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं ना उत्तर, 17:9 में पढ़ लो।
जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना।
देखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे जरा ये,
नो
हाँ जी नो।
And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, tell no one the vision. And
tell the vision to no man.
इसमें the vision है, until the Son of Man.
The vision again from the
dead.
हाँ, तो tell the vision. Vision का मतलब होता है दृश्य, दर्शन या दृश्य, ठीक है ना? तो ये है चाबी। अभी ये जो इन्होंने देखा, ये क्या देखा? दृश्य, विजन, विजन, मैं इंग्लिश में बात करूंगा, विजन, विजन है ना, विजन देखा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे विजन्स हैं, प्रकाशित वाक्य में योहन्ना देख रहा है, मैं एक औरत देख रहा हूँ वो किरमची रंग के जानवर पे बैठी हुई है, बहुत सारे पानी, ये सब क्या है? दृश्य। डैनियल दृश्य देख रहा है, सॉरी वो राजा दृश्य देख रहा है, क्या सब स्वप्न में क्या देख रहा है? बहुत बड़ी मूर्त। डैनियल दृश्य देख रहा है, एक बहुत बड़ी आंधी चली और समंदर में से चार जंतु निकले, हमारी 8वीं क्लास। तो दृश्य, दृश्य तो असलियत में ही होती है। पौलुस भी बोलता है 2 कुरिन्थियों में, जब देख मैं नहीं जानता शरीर सहत, मैं नहीं जानता शरीर रहत, एक मनुष्य तीसरे आकाश पे उठा लिया गया। तो ये सब क्या है? दृश्य, इसीलिए इसको बोलते हैं विजन। इसको इसका नाम क्या था? हम टीवी, शॉर्टकट टीवी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? टेलीविजन, टेलीविजन, नाटकीय रूपांतरण, असलियत नहीं, नाटकीय रूपांतरण। तो इसी तरीके से विजन क्या होता है? विजन एक रूपांतरण होता है जिसे हम देखते हैं लेकिन असलियत नहीं, जैसे नाटक हम देखते हैं, विजन है, हमें जो दिखाया जा रहा है हम देख रहे हैं, अगर हीरो मार रहा है तो हम वो देख रहे हैं, अगर विलेन का बोलबाला है तो हम वो देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? विजन, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने आने वाले समय की महिमा का जो दृश्य था वो दिखाया, ये नहीं कि वो वापस आए और उनसे बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, ये विजन था, ये विजन था, ये दृश्य था, ये सीन था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मूसा सचमुच आ गया था और एलिया सचमुच आ गया था, ये सिर्फ इसीलिए बोलते ना प्रभु यीशु मसीह का चेहरा क्या हो गया, बदल गया। और ये लोग ऐसे थे कि इनकी जैसे मोक्ष बोलते ना, मोक्ष, मोक्ष वाला सिस्टम हो गया था कि इनको मोक्ष रूप में वो दृश्य दिखाई दिया, और जब वापस आए तो कुछ याद भी नहीं था, ठीक है। तो फिर भी प्रभु यीशु मसीह बोलते कि ये दृश्य किसी को मत बताना मत, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह इस तस्वीर में दिखा रहे थे कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा, प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बोलते हैं, तो वो दो लोगों पे क्या करेगा, अधिकार करेगा। हमने देखा ना आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, हर एक संसार का आकाश और पृथ्वी है ना। तो जब तीसरे संसार में परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह राजा बन के आएगा, उसके पास अधिकार होगा दो, आकाश और पृथ्वी। कौन सा? तीसरा आकाश और पृथ्वी। तीसरा आकाश क्या? हवा में आत्मिक राज्य, और पृथ्वी क्या? धरती पे कंट्रोल। तो उसमें दो जो ग्रुप है, एलिया, एलिया तस्वीर है आत्मिक लोगों की, और मूसा, मूसा तस्वीर है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में इस धरती पे आज जैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, पॉलिटिक्स तब भी होगी लेकिन उसमें उसको चलाने वाले कौन होंगे? परमेश्वर के लोग। कौन? अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, ये सब। तो मूसा ग्रुप जो है वो कौन है? वो इज़राइल के लोग जो इस धरती पे देखी रूप में राज्य करेंगे। एलिया कौन है? आत्मिक। आत्मिक कौन? क्योंकि एलिया कहां गया? तीसरे आकाश में ले लिया, बाबरोले में ऐसे उड़ गया। तो एलिया क्या? आत्मिक, यानी तीसरे आकाश में, यानी कलीसिया। तो प्रभु यीशु मसीह दो लोगों को वो करेगा, कलीसिया को हुक्म देगा और इज़राइल को हुक्म देगा, और धरती पे राज्य चलेगा। तो वो तस्वीर दिखाई किसको? चेलों को। मेरा राज्य देखना चाहते हो? मैं दिखाता हूं तुम्हें राज्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इसीलिए बोलते जब तक मैं फिर से ना जी उठूं तब तक ये बात किसी को ना बताना, जब तक मैं सॉरी मुर्दों में मेरा पुनरुत्थान ना हो जाए तब तक ये बात किसी को नहीं बताना, समझ गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने तस्वीर दिखाई,
दृश्य दिखाया था वो रास्ता।
और ये जो लिखी ना पहली लाइन, छह दिनों के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। छह दिन का मतलब है 6,000 साल। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दिन का मतलब क्या है?
1,000 साल।
तो 6 दिन का मतलब 6,000 साल। इसका मतलब तो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि ये क्यों बोला 6,000 साल के बाद, ठीक है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब मूसा और एलिया की आत्माएं वापस नहीं आई थी, मरे हुए मूसा और एलिया वापस नहीं आए थे, वो सिर्फ एक दृश्य था और
विजन बोल सकते हैं।
हाँ, विजन था, दृश्य था, ठीक है, पिक्चर थी, एक तस्वीर थी, ठीक है। अभी तीसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपने भी सुनी होगी, चोर वाली बात। लूका 23:42, हाँ जी पढ़िए पढ़िए।
तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना।
तो
मेरी स्तुति लेना,
यीशु मसीह क्या बोलते हैं उत्तर में?
उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
तो ये बड़ा फेमस पॉपुलर प्रसिद्ध वचन हर एक के मन में आता है गुड फ्राइडे वाले दिन, चोर जो तौबा करता है वो भी स्वर्ग में चला जाएगा जैसे उस दिन हुआ।
लेकिन
नहीं वो बात अलग मैं बताता हूँ। तो ये क्या बात है, इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ लीजिए 42 वचन। हाँ पैराडाइज, आपके भी बाइबल में पैराडाइज है? क्या लिखा है? आगे पैराडाइज अंडरलाइन कर लो ये वचन। हिंदी में क्या लिखा है, तुम आज ही मेरे साथ? तो यहाँ पे ये चीज पैराडाइज को स्वर्ग नहीं बोलते, हेवन को स्वर्ग बोलते हैं पैराडाइज। ये गोल चक्कर लगा लीजिए आपके हिंदी बाइबल में। ठीक है, तो क्या ये सच है कि चोर उसी दिन स्वर्ग में गया? 43 में भी पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या बोला था,
उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा।
उसके आगे आगे
44 में लगभग 2 पैर से 3 पैर तक।
ठीक है, बस बस बस। तो क्या हुआ, चोर ने प्रभु यीशु भी नहीं बोला, क्या बोला, यीशु, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए। तो प्रभु क्या बोलते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। पैराडाइज
हवा वाले स्वर्ग में?
पैराडाइज नहीं, मैं बताऊंगा पैराडाइज क्या होता है। तो ये विनती थी चोर की प्रभु यीशु मसीह के राज्य में के मेरे पे वो करना, अपना ध्यान रखना, मेरी शुद्धि लेना। तो प्रभु भी नहीं बोला उसने, उसने सिर्फ क्या बोला, यीशु। या दैट इज मिस ट्रांसलेशन, एरेंजमेंट, ओके, इन एनआईवी इट इज नॉट देयर। तो चोर ने अभी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के नाम, प्रभु के तौर पे तो स्वीकार नहीं किया होगा, उसने यीशु बोला, हे यीशु, वो एनआईवी की ट्रांसलेशन है इसलिए उसमें यीशु है। ठीक है, तो दूसरी बात, चोर को पवित्र आत्मा भी नहीं मिली थी कि वो पहचान ले के यही प्रभु है। ठीक है, पवित्र आत्मा तो प्रेरितों को कब मिली, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, 40 दिन के बाद, पेंतीक्रूस वाले दिन, है ना। और ये चोर बिना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कैसे बुला सकता है, है ना। और दूसरी बात, दूसरा ध्यान रखने वाली बात ये है, प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को क्या बोलते हैं स्वर्ग के बारे में, यूहन्ना 14:3 में पढ़ लो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। 14:3,
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी।
और यदि, अगर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ऊपर जाके जगह, प्रभु यीशु मसीह ने अभी जगह भी तैयार नहीं की और चोर पहले ही पहुंच गया। और प्रेरितों ने भी कभी भी प्रभु से यह नहीं पूछा कि हमें स्वर्ग में जाना है, वो नहीं समझते थे, वो तो लड़ते थे आपस में। वो समझते थे जब प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की मिनिस्ट्री में कि ये इज़राइल के सिंहासन पे बैठने वाला है, ये राजा बनने वाला है, इसलिए लड़ते थे आपस में। ये पढ़ लो प्रेरितों के काम 1:6,
अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय इज़राइल को राज फेर देगा?
तो वो सोच रहे थे प्रभु यीशु मसीह तो राज्य की बहाली करेगा, वो सोच रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह, ये प्रेरित उसके साथ जो घूम रहे थे ये सोच रहे थे कि हम तो, ये एक राजा होगा और हम इसके
अहुदेदार होंगे।
ठीक है, तो प्रेरितों ने भी ये नहीं सोचा था कि ये तो हमें स्वर्ग के रास्ते की बात, स्वर्ग के राज्य के में लेके जाने वाला है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रेरितों को मैं जगह तैयार करूंगा जाके और फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और ये चोर को जगह की जरूरत ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग में कितने दिन के बाद गए? 43 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 40 दिन तो वो रहे और तीसरे दिन उनका पुनर्थान हुआ था। 43 दिन के बाद गए स्वर्ग में, और ये चोर उसी दिन कैसे पहुंच सकता है स्वर्ग में? सोचने वाली बात है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। तो ये ना प्रेरित ना समझ, उन्होंने ना कभी इच्छा जाहिर की स्वर्ग में जाने की, और ना ही उनको पता चला कब तक, जिस दिन पेंटिक्रूस वाले दिन पवित्र आत्मा नहीं आई, उनको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। वो समझ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह तो धरती पे राज स्थापित करेंगे और हम प्रभु के साथ वो करेंगे, अपना राज्य करेंगे। तो क्या हुआ वहां पे, क्या सब कुछ हो रहा था? ये जो चोर थे, चोर प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पे चढ़ाए जा रहे थे, और ये पहले दोनों ही चोर प्रभु यीशु मसीह का क्या उड़ा रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे, दूसरा एक दूसरे उसकी बेइज्जती कर रहे थे, सब जैसे कर रहे थे, ये भी क्या कर रहे थे? एक दूसरे की
बेइज्जती,
मतलब ये दोनों प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे थे? बेइज्जती कर रहे थे। जब ये कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, देखते देखते एक चोर के मन में दया आई, और वो क्या बोलता है? लूका 23 का 40 से लेके 41 तक, हाँ जी।
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नियमानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया।
तो एक बोलता है, यार शर्म कर कुछ, डर खा, क्योंकि हम तो अपना जो किए हैं पाप उसका दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने क्या बेचारे ने किया है, सोच जरा, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा प्रभु यीशु मसीह की सलीब पे लिखा INRI, यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा, ठीक है, ईजेस ऑफ नाजरेथ, रेक्स ऑफ ज्यूज, ठीक है। तो इधरम ज्यूज, तो ये लोग ने सब देखा, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बातचीत भी सुनी होगी राजा के साथ, है ना। यूहन्ना 19:19 में देख लो, जो पिलातुस था उसने क्या करवाया, पिलातुस ने अपनी मर्जी से करवाया ये बात, ये जो लिखवाया।
पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसने ये लिख दिया, लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा।
ये है मैं, ठीक है। तो ये बातचीत भी सुनी होगी चोरों ने, क्योंकि चोर भी उसके सामने ही दंड पाने जा रहे थे, तो साइड पे खड़े होंगे जब बातचीत, पिलातुस पूछ रहा है। तो पिलातुस को प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? यूहन्ना 18:36-37,
यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं।
तो उन्होंने सुना होगा प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरा राज्य इस जगत का नहीं है, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। तो चलते चलते एक चोर ने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह तो राजा बनने वाला है, यीशु तो राजा बनने वाला है, तो उसने उसको बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। उसने ये स्वीकार कर लिया कि इसका कोई राज्य होने वाला होगा, तभी तो ये बोल रहा है ना, ठीक है। तो बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, पैराडाइज में होगा। पैराडाइज को फिरदौस बोलते हैं, और पैराडाइज धरती पे होता है, स्वर्ग पे नहीं, स्वर्ग में नहीं होता है, ठीक। अदन की वाटिका पैराडाइज थी। ठीक है, तो ये सब देखते देखते चोर ने विनती की प्रभु से कि मुझे याद रखना। और दूसरी बात, जो खुद प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे उस दिन, पता आपको कहाँ गए थे जिस दिन वो मरे, वो कहाँ गए थे? प्रेरितों के काम 2:31, प्रेरितों के काम 2। मूवीज छोड़िए, मूवीज अभी वो पिक्चर्स, वो तस्वीर निकाल दीजिए। 2:31
उसने होने वाली बात को पहले से देखकर मसीह के जो जी उसने के विषय में भविष्यवाणी की, जिसने तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह करने पाई।
2:31 इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? 2:31
इंग्लिश में।
हाँ जी,
और एक जगह तो क्या बोला था पास्टर जी के यीशु मसीह की भी आत्मा मरी है, वो आपका पता नहीं पड़ा था? ये तो हमें और भटका रहा है।
पढ़ लो
अबाउट द रिजेक्शन ऑफ द क्राइस्ट डेथ, ही वॉज नॉट अवॉन्टेड टू हेडेड एंड नॉट डाइंग, हिज फ्लेश सी करप्शन।
यहाँ पे भी बदल दिया, ये है केजेवी, केजेवी में दिखा दो जरा क्या लिखा है। इसमें भी हेडेज लिखा है, हेडेज लिखा है, और इसमें क्या लिखा है ये पढ़ लो, केजेवी ओरिजिनल केजेवी 2:31 His soul, उसका आत्मा was not left in hell, उसका आत्मा नरक में नहीं छोड़ा गया, लेकिन 3 दिन तक पुनर्थान तक उसका आत्मा नरक में नहीं छोड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक पुनर्थान होने तक नरक में थे, नरक में थे प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक। इसीलिए बोलता नहीं छोड़ा गया, पर रहने नहीं दिया उसको, निकाल लिया गया। इसका मतलब 3 दिन तक तो थे ना, तो खुद प्रभु ये वाली बात, नरक वाली बात, मैं नरक की सच्चाई जब आपको बताऊंगा 15वें अध्याय में, तो मैं बता दूंगा जब आपको असलियत पता चल जाएगी नरक क्या है।
आपने
कल ही को पढ़ाया था, उसमें क्या लिखा हुआ, उसकी मरी, हाँ हाँ, तो अभी उसकी आत्मा,
और यहाँ पर ये भी बताया था कि परमेश्वर ने ना आत्मा भी मरती है तो देवी मरती है, शरीर भी मरता है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, भविष्यवाणी की ना तो प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह तड़ने पाई।
तो वही प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, प्राण
नहीं मरा, तड़ने पाई का मतलब
प्राण जो है यहाँ पे सोल है। सोल, सोल का मतलब क्या है? शरीर और सांस। तो जीवित आत्मा क्या है? जीवित आत्मा है शरीर और सांस, और मुर्दा आत्मा क्या होगी? सिर्फ शरीर, सांस नहीं है, बिना सांस के। तो इसलिए ये बोल रहे हैं, ठीक है, नरक में नहीं छोड़ा गया, मतलब 2 दिन तक नरक में था, उसके बाद निकाल लिया गया, उसके बाद निकाल लिया गया। तो ये बात क्या है यहाँ पे, सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि खुद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक नरक में थे और उसके बाद निकाल लिया गया। अभी नरक में क्या था, कैसे थे, ये मैं आपको जब नरक की पढ़ाई करा बताऊंगा, नरक के बारे में सत्य बताऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये अभी ये बात समझ लो कि खुद तो प्रभु यीशु मसीह उस दिन नरक में जा रहे थे, और ये चोर प्रभु यीशु मसीह से भी पहले स्वर्ग में पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। तो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको गारंटी दी थी कि तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा। अभी यहां पे मुश्किल क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, ये अनुवाद में गलती हुई। अनुवाद में गलती क्या हुई, यहां पे दो उदाहरण मैं बोल रहा हूं, सेम शब्द सेम, एक भी फर्क नहीं इंग्लिश के शब्द का, लेकिन अगर कॉमे की जगह बदल दो तो मतलब बदल जाएगा। जैसे मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, मैं अनुवाद भी करता हूं, वेरली कॉमा आई से अनटू दी कॉमा टुडे दो शैल बी, तो ये क्या है, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि आज तू मेरे साथ, अभी ये मैं कॉमा हटा देता हूं, वेरली आई से अनटू दी टुडे शैल दो बी विद मी इन पैराडाइज, तो मतलब आने वाले समय में। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था, उनके कहने का मतलब क्या था कि हे चोर, आज मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं कि तू मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में होगा। कब?
आने वाले समय में।
कब? आने वाले समय में। कब? जब जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिवाए जाएंगे और तू भी जिवाया जाएगा, और जिस दिन इस धरती पे परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा वो पैराडाइज होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, राज्य की झलकियां देखी है ना, ना तो कोई पीड़ा होगी, ना गम होगा, सबके पास अपना किता होगा, ना आंसू रहेंगे, ना बीमारी रहेगी, ना मृत्यु रहेगी, तो ये धरती पूरी क्या बन जाएगी, पैराडाइज, फिरदौस बन जाएगी ना, अदन की वाटिका की तरह, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा। तो यही बोला था चोर को कि तू मेरे साथ कहां होगा, परमेश्वर के राज्य में, तेरा भी पुनर्थान होगा, तू भी जी उठेगा, क्योंकि तेरे लिए भी मैं छुड़ौती की रकम अदा कर रहा हूं, चुका हूं। ठीक है, तो चोर स्वर्ग में नहीं। दूसरी बात, स्वर्ग में जाने के का जो मेन चीज प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक जल और आत्मा से तुम्हारा जन्म नहीं होता तुम स्वर्ग में
नहीं,
ऐसा ही बोला था ना, जब वो अमीर आया और पूछा स्वर्ग में कैसे जाए, तो वो बोलता जल और आत्मा से पैदा होना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे चोर, ऐसा तो है हम भी चोरी पूरी करते हैं, चोर चोरी करते हैं और मरते वक्त बोल देंगे प्रभु हमारी शुद्धि लेना और हम भी स्वर्ग में, ये तो बहुत आसान तरीका है। तो इस धरती
के वचन के अनुसार तो दंड तो मिलना है पक्का।
हाँ, तो एक और उदाहरण बोलता हूं मैं आपको, सिंपल, किल हिम नॉट स्पेयर हिम, इसका क्या मतलब है, इसको मत मारो छोड़ दो। एक और बोल रहा है, किल हिम नॉट स्पेयर हिम, इसको मार डालो छोड़ना मत, किल हिम नॉट, देखो शब्द सारे सेम है, किल हिम नॉट स्पेयर हिम, हाँ, इसको मारना मत, इसको छोड़ देना, और किल हिम कॉमा नॉट स्पेयर हिम, इसका मतलब इसको मार डालो छोड़ना मत। देखो एक ही शब्द है, सारे शब्द एक ही लाइन में है, सिर्फ कॉमा बदल गया, कॉमे की जगह बदलने से मतलब क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए वो जो ये जो अनुवाद में गलती की कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह 43 दिन के बाद स्वर्ग में गए, और बोलते हैं प्रेरितों को, प्रेरित बेचारे 3.5 साल धक्के खाते रहे, और चोर तो अच्छा रहा कि उसी दिन स्वर्ग में पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये अनुवाद की गलती है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। एक और कॉन्ट्राडिक्टरी वचन है, ये तीन हो गए, चौथा एक और है, पहला तसलुकिया 5:23। देखो कि चोर की कितनी महिमा होगी, जब चोर राज्य में आएगा लोग उससे पूछेंगे, अच्छा वीआईपी बन जाएगा वो, पूछेंगे जाके, अरे प्रभु यीशु मसीह मरते वक्त बताओ क्या क्या बातें हो रही थी, सब सुनाओ हमें, आंखों देखी कहानी सुनाएगा वो। पहला तसलुकिया 5:23, लोग जाया करने के सुनने, जैसे आज वो औरतें जाती है ना करवा चौथ पे कथा सुनने, ऐसे वो कथा सुनने जाया करेंगे।
शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी प्रीति से पवित्र करे,
हाँ।
और तुम्हारी आत्मा और प्राण लेकिन यहाँ पर देखो आत्मा और प्राण जी
है। ये मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ, ये आप नहीं मुझे दिखा रहे, अभी मुझे बताना आपको बाकी है।
आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे।
तो आपको लगता है यहाँ पे तीन है, आत्मा प्राण और देह, है ना, लगता है ना। इंग्लिश में स्पिरिट सोल एंड बॉडी, अभी सोल हमने क्या देखा, बॉडी प्लस स्पिरिट। तो आप बोलोगे ये तो और कंफ्यूजन है, तो चलो हम इसको पढ़ लेंगे। फर्स्ट थेसलोनियंस 5:23, ठीक है, योर होल स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी।
फर्स्ट थेसलोनियंस है, ये देखो, ये
तुम्हारी आत्मा, आत्मा मतलब स्पिरिट, प्राण, प्राण मतलब सोल एंड दे मतलब बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो ये वो ऐसा वचन दिखा रहा है कि हर एक की एक प्राण होता है, एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है। क्या ये प्रेरित पौलुस के कहने का मतलब ये है? ये बात याद रखना, ये प्रभु पौलुस किसके साथ बात कर रहा है? थिसलुकिया की कलीसिया। तो कलीसिया एक शरीर है क्या? कलीसिया का एक शरीर है क्या? ये शरीर की बात नहीं हो रही है, ये कलीसिया की बात हो रही है। और पहला थिसलुकिया 1:1 पढ़ लो, ये बात किससे हो रही है?
पौलुस और सिलवानुस और थिमोथियुस की ओर से थिसलुकिया की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती है।
तो ये किससे बात हो रही थी? थिसलुकिया की कलीसिया के बारे में बात हो रही है, ये किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है। अभी कलीसिया के बारे में क्या बोलता है वचन? एफिसियों 4:4, एक ही शरीर, एक ही आत्मा और हाँ जी 4:4,
एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने में से एक ही आशा है।
देखो, एक ही शरीर है और एक ही आत्मा। अभी ये कलीसिया के मेंबर एक आत्मा, एक देह और एक प्राण कैसे हो सकते हैं? एक और वचन पढ़ लो, प्रेरितों के काम 4:32। कलीसिया क्या है? एक शरीर। कलीसिया क्या है? एक शरीर और एक आत्मा। आत्मा का मतलब यहां पे क्या है?
कितना
4:32,
विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी।
एक चित्त
और एक मन की थी,
वन हार्ट, और यहाँ पे मन है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या है,
4:32 है ना
जी।
नाउ द कमन नंबर ऑफ दोस टू ग्रीव देयर ऑन हार्ट एंड सोल एंड,
देखो, वर ऑफ वन हार्ट एंड सोल। जो विश्वास करते हैं वो एक एक मन और एक प्राण है। आपके मन लिख दिया है, एक चित, चित मतलब दिल, और
एक चित और एक मन की
मन, मन नहीं है यहाँ पे, सोल है यहाँ पे सोल है देश में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कलीसिया जो है एक सोल है। कैसे? कलीसिया एक जीवित शरीर है, और जीवित शरीर में क्या है? एक तो शरीर है और एक तो आत्मा है। अभी वो आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब तीन मतलब बताए आपको आत्मा के, क्या क्या? एक तो मन, एक तो सांस, परमेश्वर का आत्मा जो नथनों में है, और तीसरा मतलब क्या है? शिक्षा, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो वचन मैंने तुम्हें बोले वो आत्मा है, ठीक है। तो कलीसिया क्या है? एक देह, एक प्राण, एक आत्मा। ये कलीसिया के बारे में बात हो रही है, ये मेरी आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये थी कुछ बाइबल की कॉन्ट्राडिक्शंस जो दिखाती हैं कि शायद आत्मा नाम की कोई चीज मरने के बाद रह जाती है, उधर उधर भटकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो पढ़ाई जो शिक्षा हमने पिछली क्लास में सीखी वो ऐसी की ऐसी स्थिर है। क्या सीखा था कि आत्मा तो मरती है, आत्मा तो दिखती है, आत्मा अमर नहीं है। आत्मा क्या है? ये है जीवित आत्मा। आप हो जीवित आत्मा, आप हो जीवित आत्मा जिनके पास दो चीजें हैं, सांस, शरीर। सांस मरते वक्त निकल जाती है, शरीर तो इधर रह जाता है। इसी के साथ परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।